पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही को रुद्र के ऑफिस बुलाया जाता है और दिशा देवांश के ऑफिस से इस्तीफा देने जाती है। इस अध्याय में रूही रुद्र के ऑफिस में डर के साथ जाती है और रुद्र उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वो उसे बाथटब में बैठने के लिए कहता है। दूसरी ओर जय, निहारिका, राजीव और नेहा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ निहारिका रूही के प्रति जय के व्यवहार पर सवाल उठाती है। इस अध्याय में रूही रुद्र के ऑफिस में डर के साथ जाती है और रुद्र उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वो उसे बाथटब में बैठने के लिए कहता है। दूसरी ओर जय, निहारिका, राजीव और नेहा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां निहारिका रूही के प्रति जय के व्यवहार पर सवाल उठाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर 134। अब आगे देवांश के ऑफिस के बाहर दिशा जैसे ही गुस्से में अपने सामने देखती है तो एक हैंडसम का लड़का उसके सामने था, जिसे देख वे उसे ध्यान से देखने लगती है क्योंकि उसे उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। वहीं वे लड़का जैसे ही अपने सामने खड़ी दिशा को देखता है, उसके चेहरे पर बड़ी की स्माइल आ जाती है और वे दिशा को देख खुश होते हुए बोला, दिशा ये तुम ही हो ना? वहीं दिशा उस लड़के को देख हैरानी से बोली, और तुम वही आशीष हो ना जो मुझे हर वक्त स्कूल में परेशान करता रहता था केवल इसलिए ताकि मैं तेरी बात जिया से करवा दूं, क्योंकि तुझे डायरेक्ट उससे बात करने में शर्माती थी। दिशा की बात सुनकर आशीष अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख दिशा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ठीक है अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी लव लाइफ में और नहीं घुसना और ना ही तेरी और कोई हेल्प करनी है। अगर तू अब तक उसे नहीं मना पाया तो तू आगे भी उसे नहीं मना पाएगा, और ये बात गलती से भी मत सोचना कि इन सब में मैं तेरी फिर से कोई मदद करूँगी। इतना बोल वे जाने लगती है, जिसे देख आशीष दिशा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए आगे आते हुए थोड़ा शर्माते हुए बोला, दिशु तुझे अब मेरी उसके साथ सेटिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पहले से ही प्रपोज कर दिया है और उसने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, और बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट भी है। आशीष की बात सुनकर दिशा चैन की सांस लेते हुए बोली, थैंक्स गॉड कि भगवान ने तुझे थोड़ी सी अकल दी और तूने उसे प्रपोज कर दिया, वरना मुझे तो लगा कि तू इस जन्म में कुमारा ही रह जाएगा। वैसे कंग्रेचुलेशंस कि इतनी मेहनत के बाद तू फाइनली उस लड़की से शादी करने जा रहा है जिसके तू प्यार करता है, क्योंकि प्यार बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, और ऐसी शादी भी जिसमें हमारा जीवन साथी वे हो जिसे हम चाहते हों। तू अपने प्यार को संभाल कर रखना। दिशा की बात सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए उसके सर पर हल्का मारते हुए कहता है, दिशु तू कब से इतना इमोशनल बातें करने लगी, तुझे भी एक दिन तेरा प्यार जरूर मिलेगा, फिर मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा। आशीष की बात सुनकर दिशा मुस्कुराते हुए कहती हैं, शायद तेरी बात सच हो, मुझे भी उस इंसान का इंतजार है जो मुझसे प्यार के साथ साथ मेरी इज्जत करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती ना करे, और सबसे बड़ी बात मुझे आज़ादी दे, मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोके टोके नहीं। इतना बोल वे मुस्कुरा देती है। वहीं आशीष दिशा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दिशु तू चिंता मत कर, तुझे तेरे सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा, जिस तरह मुझे मेरी जिया मिल गई। लेकिन एक बात सुन ले, मैं अभी भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि शादी और एंगेजमेंट की शॉपिंग में तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। आशीष की बात सुनकर दिशा अपना सर पीटते हुए कहती है, मतलब अब इसमें भी मैं तेरी हेल्प करूं? दिशा की बात सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, वैसे ये बता तू इस ऑफिस के बाहर क्या कर रही है, कहीं तू यहाँ काम तो नहीं करती? आशीष की बात सुनकर दिशा की आंखों के सामने देवांश की कल रात की सारी हरकतें आ जाती हैं, जिसे याद कर दिशा गुस्से में बोली, नहीं मैं यहाँ काम नहीं करती, अब मैं चलती हूँ, मैं तुझसे फिर कभी मिलती हूँ। इतना बोल वे जैसे ही जाने को हुई, आशीष उसे रोकते हुए बोला, अरे ठीक है तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है, मैं तो यहीं इस ऑफिस के पास वाले ऑफिस में ही काम करता हूँ, और मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन मुझे तू मिल गई, मुझे लगा कि तू यहीं पर काम करती होगी इसलिए पूछ लिया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात कौन की है, अगर तुझे कोई काम है तो चली जाना, लेकिन पहले तू अपना नंबर तो दे दे, वरना मैं तुझसे दोबारा बात कैसे करूंगा। आशीष की बात सुनकर दिशा को भी एहसास होता है कि वे फालतू में आशीष के साथ रूढ़ हो गई, जिस वजह से वे आशीष से ज्यादा बहस नहीं करती और उसे अपना नंबर देते हुए कहती हैं, अब मैं जाऊं कि तुम्हें अभी भी मुझे परेशान करना है? दिशा की बात सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए बोला, नहीं आज के लिए इतना काफी था, अब तुझे बाद में परेशान करूंगा। आशीष की बात सुनकर दिशा अपना सर नामे हिला देती है और तुरंत वहां से चली जाती है, जिसे देख आशीष भी वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में रुद्र रूही को चुपचाप अपनी बात मानता हुआ और बाथटब में बैठा हुआ देख अपने शर्ट के बटन एक एक कर खोलने लगता है। कुछ देर में अपने शर्ट के बटन खोलने के बाद रुद्र रूही के करीब जा बाथटब के अंदर आ जाता है। वहीं रूही जो चुपचाप अपनी पलकें झुका उस बाथटब के ठंडे पानी में बैठी हुई थी, वे जैसे ही रुद्र को रुद्र के अंदर आता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर डर नजर आने लगता है और वे रुद्र को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती हैं, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? अगर आपको नहाना है तो आप नहा लीजिए, मैं बाहर चली जाती हूँ। इतना बोल वे बाथटब में से उठने लगती है।
वहीं रुद्र रूही को जैसे ही बाथटब से उठते हुए देखता है, वे तुरंत रूही की कमर को पकड़ अपने करीब खींच उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वहीं रुद्र के यूं अचानक खींचने से रूही की हल्की सी चीख निकल जाती है और गिरने के डर की वजह से वे रुद्र के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। वहीं रुद्र रूही के डरे हुए चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे को पकड़ अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, रू, जब मैंने कहा था यहां से मत हिलना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की। रुद्र की बातों को सुनकर और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर रूही रुद्र से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मुझे आपसे डर लग रहा है और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही के चेहरे को ऊपर उठा, उसके गालों को सहलाते हुए थोड़े डरावने तरीके से बोला, मेरी रू को मुझसे डर लग रहा है तो रू तुम्हें मुझसे डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उसके बाद मैं तुमसे प्यार से बात नहीं कर सकता। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, इसलिए तुम कॉलेज में जाकर ऐसी हरकतें कर रही हो।
रुद्र के मुंह से कॉलेज की बात सुनकर रूही का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है।